उनके बस सफल पर विराजमान है, कभी क्षीण रेखा के रूप में और कहीं स्पष्ट रूप में है, ये कभी संभव पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, सोचा कि हमारे प्रियतम ने हमारे पास में हमें मनाने के लिए भेजा और हमने इस दूत को और उनके प्रभु दोनों को ही बहुत सी कड़ी बातें सुना दी, ऐसा करना अनुचित हुआ। उनका मान और भी प्रशमित हो गया और आदर पूर्वक वो उनसे कुछ कहने लग गई। तो करें अपिवत मधुपोविजा आज पुत्रा धुनास्ते स्मरति सपेत्री गेहान सौम्य बंधुस्य गोपान क्वचित अपिसा कथा न किंकरीनां गृणीते भुजमगर सुगंधम मुद्धन्न धास्यत् कदा। हे सौम्य, कहाँ बातचीत हो रहा है? आज प्रार्थना क्या आर्य पुत्र अभी मथुरा में है? क्या कभी वे पितृ गेहान पिता और पिता के घर को कभी स्मृति स्मरण करते हैं? बंधुश्च गोपान अपने बंधु गोपों को भी क्या वो स्मरण करते हैं? क्या कभी भी वे सह न कथा किंकरणी नाम गृणीते क्या कभी वे हम किंकरियों की बात कभी स्मरण याद करते हैं स्मरण करते हैं? और भुजम अगर सुगंधम मुद्धन नधास्त कदान ऐसे प्रियतम क्या आएंगे और अपने भुजाओं में अगरू की सुगंध लगाए हुए हमारे सिर पर रख करके हमारा भय दान करेंगे? ऐसा कहते 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 वो मूर्छित हो गए। किसी को कह रहे हैं हाय, बड़े दुख की बात है, हंत हंत मयो उन्मत्तया मैं उन्मत्त होकर के उन्माद में पागल होकर क्या प्रलाप मैंने किया? जो पूछने की बात थी तो मैंने तो पूछा ही नहीं, बेकार की प्रलाप बातें, प्रलाप मैंने उलूल जुलूल व्यक्त की बातें हमने उससे की, काम की कोई भी बात नहीं पूछा और हमने उलूल जुलूल बातों में इसकी भी निंदा की और उसके प्रभु की भी निंदा की, तरह तरह के लांछना लगाए निष्ठुर और न जाने जाने हमने क्या कहा। ओ, ऐसा हमें उचित नहीं। ऐसा सोच करके अनुताप करने लगी, उनका मान कुछ उतर गया और गौरव के साथ में सम्भ्रम के साथ में नम्र होकर के पूछने लगी, हे सौम्य। सौम्य देख, अब सौम्य देख रहे, अभी तक तो कुटिल देख रहे थे, कुटिल का मित्र कुटिल, और इस समय में उसको सौम्य कह रहे हैं। मधुपुर्जाम आस्ते अपिवत मधुपुर्जा क्या वे अपि वत खेद में वत्सप अपि क्यों लगा दिया? सीधे पूछती है मथुरा में है, मथुरा में है या नहीं, मथुरा में आ गए हैं ये पूछती, अपि लगाया, अपि संभावना हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए कि वो तो चंचल है, जैसे तुम चंचल हो ऐसे वो भी चंचल है, जैसे ब्रज को छोड़ करके चले गए, ब्रज में नहीं रहे तो मथुरा में क्या रहेंगे, इसलिए हो सकता है कि मथुरा पर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए, उनका यह स्वभाव है। तो मधुपुर जम आस्ते ब्रजम इव या ब्रज की तरफ थे उसको भी छोड़ करके अन्यत्र किंचित कहीं दूसरी जगह चले गए। सुना था वसुदेव जी बड़े निष्ठुर हैं, निर्दय हैं, वो बहेलियों से भी अधिक निष्ठुर हैं, यहां तक ऐसे निष्ठुर है कि दूसरे के बेटे को भी किसी प्रकार से आबद्ध करके अपने अपना बेटा बनाकर के रखता है और दूसरे मरे ये उनको तनिक भी कोई कष्ट और ये नहीं, इतने वो निष्ठुर है। इसलिए यहां से जाने के बाद ही सुना बिना जूता छाता किसी तरह बहुत दूर पहाड़ अंचलों में उसे दे दिया। अरे पढ़ाने के लिए उनको पैसे की कमी थी, अपने घर में ही पढ़ा लेते, इतनी दूर पैदल जा करके मध्य प्रदेश में वो भी पहाड़ी अंचल में जहां पर निष्ठुर निर्दय वास करते हैं, संसार त्यागी संसार को मिथ्या झूठा कहने वाले लोग वो बड़े निष्ठुर होते हैं, इसलिए उनके पास में भेज दिया। ऐसा निष्ठुर ये चले गए। इतः समीपवर्ती तत्पूर्वजन तस्य स्थिति अत्र आगमनम असंभवात् संभावनानाम अपि उत्पादयति। भ्रमर ने कुछ सिर हिलाया, न जाच्चा मधुपुरी में ही है तो निकट है, निकट रहने से तात्पर्य ये कि कृष्ण तो आर्यपुत्र, यहाँ पर आर्यपुत्र आर्यपुत्रो धुनास्ते आर्यपुत्र, आर्य माने सरल सीधा, वसुदेव इत्यादि जो है वो आर्य नहीं है, नंद बाबा आर्य है, नंद बाबा बड़े सरल हैं, सरल सीधे। अरे सरल सीधे नहीं होते तो अपने बेटे को छोड़ करके चले आते खाली हाथ, और यहाँ पर जब से आए हैं तब से पड़े हुए हैं औंधे मुख, न किसी से बोलना न खाना न पीना सब, ऐसा कोई सरल होता है? ये सरल का दुरुपयोग उन्होंने किया, वो लोग कठोर है, इसलिए कह रहे हैं कि अब ये कृष्ण सचमुच में आर्य पुत्र हैं, तो आर्य जैसे सरल हैं उनका पुत्र भी ऐसा ही सरल होना चाहिए। इसलिए कृष्ण की इच्छा हो रही है, बस हो गया सुनना, वो बहुत ही सरल सीधा है, वो आना चाहते हैं किंतु ये लोग आने देना नहीं चाहते हैं, किंतु उनको स्मरण है हमारा प्रणय, गौओं का उनका प्रेम, सखाओं का प्रेम, माता पिता का प्रेम, सखाओं का प्रेम, इसलिए व्याकुल हो रहे होंगे, कोई उपाय खोजते होंगे आने के लिए, किंतु वो जो है ना वो आर्य आर्य नहीं है, वसुदेव देवकी और मथुरावासी। जदु भी जदु विनीत है, दुर्विनीत कठोर है, नम्रता नहीं है, कृष्ण को हंसा रहे हैं, प्रताड़ना माने ठग रहे हैं, तू हमारा बेटा है। देवकी कहती है तू मेरा बेटा है, किंतु कृष्ण का मन पिघलता नहीं। इसलिए जो ही कृष्ण आने के लिए तैयार होते हैं वहीं पर बस देव देवकी दोनों झट 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 कर करके रोने लगते हैं। जब रोते देखते हैं तो वो आर्य पुत्र है ना, सरल है, उनका रोना देख करके ये भी रोने लगता है, जानता है कि उनके बेटे नहीं है, मैं मथुरापुरी का नहीं हूं, किंतु उनका रोना देख करके हृदय उनका द्रवित हो जाता है। उनके रोने से ये ठग जाते हैं, उनको रो 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 करके ठग लेते हैं। अरे वो तो हमारा आर्य पुत्र कैसे हैं, सारलस्य समुद्रस्य, सरल के समुद्र हैं, नंद बाबा उनके ये पुत्र हैं ना, इसलिए उनके प्राण से भी पुत्र हैं, इसलिए कभी उनको भूल सकते हैं नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ब्रजवासियों को। ओ कृष्ण सोच रहे हैं, आर्य पुत्र है ना, सोच रहे हैं ओहो बाबा तो हमारे बड़े सर्व सीधे हैं, हमको रख करके यहां से चले गए, अब वो आ नहीं रहे मुझे ले जाने के लिए, पिताजी कैसे इतने निष्ठुर हो गए। इसलिए पिताजी नहीं आ रहे हैं तो अब मैं यहां नहीं रहूंगा, गंतुम कमक उपायम करोमि, कोई भी जाने के लिए उपाय करो, कैसे मैं जल्दी से चला जाऊं। वे जाने में विलंब देकर के वो रो रहे हैं ना, जब ही जाते हैं तभी रोने लगते हैं, आओ और जगह में आया है। मथुरापुर के जितने भी अक्रूर कुर भी अक्रूर बन करके वो भी रोने लगता है, उद्धव इत्यादि सभी लोग मिलकर के रोने लगते हैं। बस या तो पत्र लिखेंगे ना तो उद्धव से, उद्धव तुम चला, नहीं तो बलदेव जी को कहेंगे तुम जरा जाकर के सांत्वना दो, खुद नहीं आ पाते। इसलिए अब उनसे अब सहा नहीं जाता है मथुरा में रहना, स्थापयति अपिवत मधुपुरी जम, इसलिए संभावना इस बात की है अब वो सह नहीं रहे, अब उन्होंने वहां से प्रस्थावना कर दिया है, मैंने प्रस्थापन मैंने यात्रा कर दी होगी और वो शायद आ रहे हैं, अब आते ही होंगे, जब वहां से चल दिया है जरूर आ रहे हैं, इसलिए करें अपिपति मधुपुरी जम आज पुत्रो अधुना ते इन मधुपुर जम आस्ते इति तस्य को दोष, यदि अभी भी मथुरापुरी में थे तो उनका क्या दोष है, वो तो अति सरल है, आर्य पुत्र है, किंतु ये लोग जो आने नहीं रहते, तरह तरह से कुबंत्रणा करके, तरह तरह से ठक करके, और वो किसी तरह से आने ही नहीं देते, कोई ना कोई बहाना बना करके और उसको यत आर्यस्य इति सरलस्य स्वपरिणाम अदर्शित्वा। ओहो नंद बाबा तो सरलता की मूर्ति है, ये सरल सीधे व्यक्ति अक्रूर के कहने से अपने बेटे को लेकर के चले गए, जो प्राण से भी कोटि प्रिय, और वहां जाकर के कोई परिणाम नहीं देखा, अपरिणाम दर्शी। एक होते हैं ऐसे व्यक्ति जो परिणाम दर्शी होते हैं, मैं ये काम करने जा रहा हूं तो इसका ये परिणाम होगा। कृषक आकाश में देखे बिना ही, यहां कार्तिक महीना आया, अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं, किस लिए जानते हैं, आशा है कि उसमें से कुछ दिनों के बाद में अंकुर निकलेगा, अंकुर निकलने के बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वर्षा आएगी, और वर्षा से फिर खेत लहलहा उठेगा, उसमें धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, ऐसा समझ करके इस आशा से कहता है। यदि मान ले कि किसी वर्ष वर्षा नहीं हुई, कुछ सुखाड़ पड़ गई, तो कोई बात नहीं है, वर्षा होने का समय है। इसलिए इस परिणाम को देख करके और लोग भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे, इसलिए वो करते हैं। प्रति वर्ष ऐसा होता है, कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है, किंतु होना चाहिए ऐसे, इसलिए परिणाम देख करके करते हैं। यदि ये आदमी समझे कि मेरा बेटा मर जाएगा अथवा जीवित रहेगा तो हमारा बड़ा भाई हमारे प्रति अन्याय करेगा, अलग हो जाएगा, हमारी सेवा नहीं करेगा और हमें मारेगा, पीटेगा, दुख देगा, तो कोई मैया अपने बेटे को पालन करेगी? नहीं कर सकती। इसीलिए तो प्रहलाद उपाख्यान के पहले वो जो है ना, मर गया कौन, मर गए, तो उनकी स्त्रियां कहती है ब्रह्मा को कोई ज्ञान नहीं, अपरिणाम दर्शी। यदि सब बच्चे ऐसे ही मर जाएं तो कौन स्त्री अपने बेटे को और कौन पिता अपने बेटे को पालन पोषण करके बड़ा करेगा? क्यों जानेगा जी ये तो मर जाएगा कुछ दिनों के बाद, कोई नहीं करेगा, अपरिणाम दर्शी। तो ये नंद बाबा भी अपरिणाम दर्शी, बेटे को ले जाना नहीं चाहिए था, खुद जाना चाहिए था, किंतु अपने बेटे को ले गए, और जब ले गए तो ले गए अपने साथ में ले आते, किंतु अपरिणाम दर्शी, इसका कल क्या फायदा फल होगा ये नहीं समझ। बेटों के कहने में, बच्चों के कहने में और उन्हों के कहने में होकर के उन्होंने ये कहा, अच्छा बेटे पिताजी मैं कल आ जाऊंगा, और उनके गठरी में सोने के अलंकार इत्यादि बांध दिए, और ले करके जानते हैं मैं कैसे प्रज में लेकर के दूंगा, मैं एक ऐसा जघन्य व्यक्ति जो थोड़े से रुपए पैसे के लालच में, गहने के लालच में अपने बेटा को बेच आया, लोग कहेंगे प्रज में। इसलिए वो शाम को रात होने पर अंधकार में घर में घुसे, वो भी पिछले दरवाजे से घुसे, और घुस करके तकिए पर अपना सिर रख करके नीचे बस रोते रहा। अब तक यशोदा जी को आशा थी ये आएगा हमारा बेटा, हमारा पति उसको लेकर के, जब औंधे मुख गिर गए और कुछ नहीं बोला, तब फिर एकदम सन्न रह गए, पूछा नहीं, और वो भी किस मुख से उत्तर दें, वो कहते अपरिणाम दर्शी। सुन्य सनंदस से पुत्र आया, किंतु पुत्र से शून्य होकर के पुत्र को साथ में नहीं लाए, तादिशम पुत्रम तादिशम पिता, ऐसा पुत्र कौन, कैसा, कृष्ण जैसा पुत्र, और पिता ऐसे जो ऐसे पुत्र को सब गुण संपन्न, परम सुंदर, मधुर मधुर भाषी, सबके चित्त को अनुरंजन करने वाला है, ऐसा पुत्र किसी को नहीं होता, और ऐसे पुत्र को छोड़ करके नंद बाबा चले आए। भजम आयास इति, कहा जाना थी, ब्रज में लौट आए, कैसे लौट आए, बड़ा भारी असंभव, ये छोड़कर के कैसे चले आए, कैसा उनका हृदय, अपरिणाम दर्शी। यदि अगस्त 7 बजरा की और नंद के बदले यदि जसोदा मैया होती तो आज ऐसी घटना नहीं होती। पुत्र को नंद बाबा गोदी में लेकर के गए और छोड़ करके चले आए, हम लोग कैसे उनके सामने जाएं, ससुर के सामने, ससुर जैसे, पिता जैसे, गुरु जैसे, उनके सामने हम कभी नहीं गई, इसलिए उनके सामने हम कैसे जाती, इसलिए हम लोग नहीं जा सकी। यदि यशोदा जी होती और वो जाती उनके साथ में, उस समय में तावत अक्रूरस रथा आरूढ़ एव, वो तो अपने बेटे को रथ पर चढ़ जाती और बेटे को सपुत्रम कंठे कुर्वत्येव, कंठ में लगा करके मथुरा में यदि जाती किसी हाल, हम लाखों करोड़ों की संख्या में हम गोपियां उनके साथ नहीं जाती, तामनु मैं उनके पीछे पीछे जाती हूँ, हम लोग रथ के साथ साथ में। गोपिका श्रेण्यश्च, लाखों कोटि श्रेणियां उनके साथ में जाती, पहले तो यशोदा जी को ले जाने नहीं जाती और लेकर के जाती तम भी पीछे पीछे चलती। इति ब्रजराजस आर्जप्तम एव अस्माकम, ओहो उस समय जाकर के हम देखती जे कैसे ये मथुरा में लेकर के रख दिए या ले जाती।
नंद महाराज की सरलता,
किंतु आज नंद महाराज की सरलता से आज हम सब लोगों का अस्माकम सर्वनाशम, हम लोगों का सर्वनाश हो गया। ये नंद बाबा का जाना ही, उनकी सरलता नहीं, हम लोग का हमारे सर्वनाश का ये कारण अभूत। इति भाव अपिवती मधुपुरी जाम आर्ज पुत्रो धुनास्ति, किंतु फिर भी आर्ज पुत्र है, शरण है, वो मान नहीं सकते, बड़े दुखी होंगे। दुखी तो इतने दिन होते होते रह गए और उनको दोष विदेश में भेज दिया, वहां से आकर के अब वो आई रहे होंगे, जरा देखो तो आ गए, ये अपिबोध करता है। अतः अति सरलता वसुदेवेन, ओहो ऐसे नंद बाबा की सरलता का दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया, कौन वसुदेव इत्यादि बड़े भाई छोटे भैया बनकर, जिसके बेटे को जिसकी स्त्री को नंद बाबा ने कितने प्यार से रखा, उनके बेटे में अपने बेटे में कोई अंतर नहीं देखा, बल्कि बलदेव जी को अधिक स्नेह किया। आज वो वसुदेव जी महाप्रतारक है ना, महाप्रतारक, प्रतारक माने ठग, कैसे ठग करके निष्ठुर बन करके, अरे सोचता ये तो जैसे हम अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसे इसके पिता भी मैया भी ब्रजवासी लोग भी इसके लिए तड़प रहे होंगे, ये तो नहीं सोचा। इसलिए अच्छित्य गृहित पुत्रस्य भजम आगता मूर्छया पतित्वा स्थितस्य गेहं, ओ नंद बाबा तो नंद बाबा से रख लिया अपने बेटे को, बलदेव जी को तो रख ही लिया बलराम को, और कृष्ण को भी रख लिया छल बद चातुरी से, नंद बाबा के पास में नहीं आने आया जे बाबा तुम खाया पिया कि नहीं, पानी भी पिया कि नहीं, कुछ नहीं। अंत में बाबा लौट आए खाली हाथ और आकर के तकिए पर रख करके रोने लगे, जो सोदा मैया भी उधर में पड़ी इतनी। गेहान पित्री गेहान, अब तो ये पित्री हुए, किनके आर्य पुत्र, आर्य के पुत्र जिनके पुत्र हैं वो कैसे सरल हैं, और वो पिताजी के संबंध में मैया के संबंध में बतलाया, अपने संबंध में कुछ नहीं कहा। नंद बाबा यशोदा के लिए कह रहे हैं कैसे घर में आकर के औंधे पड़ गए रोते हुए, कोषागार रंधनागार शयन आदिगार तत्प्रतिम अर्जिता अलिप्तेन तीर्ण धूलि पत्र प्लूता तंतु वृतान शून्यायितान स्मरति, ओ पिता आ गए और आज तक खाए नहीं, अंधे हो गए या क्या हो गया, जो सुधा मैया की केवल ठठरियां लगी हुई हैं और वो कोषागार रंधन आगार जिसमें रसोई होती है पाकशाला आज शून्य है, शयनागार अब उसमें बिछौने नहीं लगते, वैसा का वैसा पड़ा हुआ बिछौना, और उसके ऊपर में तीर्ण धूली और मकड़ों के जाल उस पर लग गए हैं, रसोई घर में सर्वत्र, जिस दिन से कृष्ण गए अब रसोई उस दिन से बनी नहीं, उसमें दिया बत्ती जला नहीं, कोई गया नहीं, धूलि से आपृत हो गई रसोई घर, और बर्तन मजे नहीं है, औंधे पड़े हुए हैं, कोई मालिक उनका नहीं, देखभाल करने वाला नहीं। प्रतिदिन रसोई घर में चूल्हा चक्की इत्यादि जितना सब लिपा पोता जाता है, स्वच्छ किया जाता है, कोई जरूरत नहीं रही, सब ऐसे पड़ रहे। और दो दिन कोई वहां पर नहीं गया ना, मकड़े जाल बुन देते हैं। उन रसोई घर में जहां पर कि बर्तन बैठता था वहां पर मकड़ों ने अब जाल बुन लिया। सैया पर फूल चढ़ता था, फूल से सैया बनती थी कृष्ण की, आज वो सैया ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, उस पर धूल तीन इत्यादि सब पड़ा हुआ है, मानो कृष्ण के लिए वे सभी रो रहे हैं निष्ठुर निर्दयी कह करके। शून्य आयतान, सब शून्य पड़े हैं। ऐसे घर को क्या वो शून्य देखता है, स्मरण करता है क्या? कितना प्यार था, प्यारा था उनका रसोईया घर, यहां पर की यशोदा मैया रसोई बनाती हैं, और रसोई बनाते समय उनके गोदी में बैठ करके वो रोटी में मक्खन लगा करके मिश्री के साथ में जब तक मैया नहीं दे देती उठते नहीं थे वहां। अब रसोई घर सुना पड़ा है, रोटी बनती नहीं, मक्खन की तो बात ही क्या, मक्खन अब महा नहीं जाता, सब शून्य है। क्या वो एक बार भी स्मरण करता है दिन अंत में? दिन भर में कभी एक बार भी तो हो? आर्य पुत्र तो आर्य का गुण उसमें होना चाहिए, आर्य का पुत्र का गुण है या नहीं है, वैसा सरल सीधा है कि नहीं? तथा के अंतरेश, तो उन घरों के अंदर में उनके सखा अब गैया चराने नहीं जाते, दिन भर रोते कलपते हैं, कृष्ण कन्हैया कहते हैं। आज उन सखाओं को सिदाम, सुबक, मधुमंगल, लवंग, अर्जुन इत्यादि को एक बार भी दिन में स्मरण करता है? जिस समय गौवा चराने के लिए जाता है, गौवा चरा करके आता था, एक बार भी बंधुन जो गोप बंधु हैं उनको क्या स्मरण करते हैं? सुबलादि संप्रति मूर्छितान, आज तक मूर्छित हुआ करके घर में गिरे पड़े हुए हैं, उनको मूर्छा से छुड़ाने वाले उनके पिता और माता भी नहीं अब उनको मूर्छा से उठाते, वो भी कृष्ण के विरह में है। जदातस्य मनो अभिरुचितम कैंकर्यव कर्तुम पुरुष स्त्रियों उन्होंने जाना। यहाँ पर कृष्ण के लिए सखा लोग देखते थे, मैया जसोदा, रोहिणी मैया, सभी लोग कृष्ण को खिलाते पिलाते लाड प्यार करते थे, और कृष्ण उसे बहुत प्रसन्न रहते थे, सब समय कमल के फूल की भांति में खिला हुआ, वो जैसा चाहता था वैसा ही होता था, वैसे ही सेवा करती थी। हम भी कभी कभी उनकी दासी की भांति सेवा हम करती थी। अब देखो अब आया उनका प्रसंग, अपना प्रसंग, बड़ी गंभीर रूप से उन्होंने कहा, इसलिए गंभीर भी उनमें है। पहले माता पिता सखा सबको कह करके अंत में जब रहा नहीं गया तो फिर अपना दुख दर्द उनको बतला रही है। किसे कह रही है? वही भ्रमर से। ओह, जैसे हम लोग सेवा करती थी वैसा क्या जदुपुर की स्त्रियां कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तथा एव तत्सुखम अनुपलब्धवती भी ताभी सुखानुलब्ध, हम उनके सुख में सुखी, दुख में दुखी रहती थी, कभी दुखी रहने का तो प्रश्न ही नहीं। तथा एव तत्सुखम अनुपलब्धवती, अब ये देख रही हैं कि हम है नहीं, जसोदा मैया है नहीं, कृष्ण की मनोभिलाषा कौन पूर्ण करता होगा? कृष्ण कभी भी देवकी मैया से नहीं बोले जे मैया बड़ी भूख लगी है, कभी नहीं कहते, लज्जा आती थी कहने में, उनको मैया कहने में ही लज्जा, ये समझते कि दूसरी कोई है, इसलिए कभी नहीं मांगते थे। देने पर भी इन्हें भूख नहीं है, तरका देते थे। रोनी मैया कदापि आ जाती तो वो देने के लिए अभ्यस्त थी, इसलिए उसके दिए हुए वो खा लेते थे प्राण रक्षा के लिए। देखा कि हम तो है नहीं, जसोदा मैया है नहीं, इसकी कौन सेवा उसके मन के अनुरूप करता होगा। इसलिए बड़ी दुखी होकर के फिर ये पूछ रही है अंत में, अस्माकं कथा गणिते, क्या कभी हम लोगों को स्मरण करता है, हम दुखियों को, हम दासियां को, दासियों को, क्वचित अपि स कथा न किंकरीणा। अब तक किंकरी अपने को नहीं कहती थी, आज महा दुखी होकर के आज किंकरी कह रही है उनको। क्या कभी भी क्वचित अपि, क्वचित अपि माने दिन भर में, रात भर में, कभी इतने दिन हुए, कभी भी कोई स्मरण कराता है तब स्मरण करता है कि अपने आप स्मरण करता है? यदि दूसरा कोई उसको स्मरण कराता है और तब स्मरण करता, हमको इसकी जरूरत नहीं, हमको क्या जरूरत है? स्वाभाविक रूप में किसी भी कार्य के बहाने, अच्छे या बुरा, कभी हम लोगों का स्मरण करता है। बनमाना गुंफने, क्या कभी वो मथुरा की रमणियां सुंदर सुंदर माला गूंथ करके ले आती है, कृष्ण को पहनाती हैं, उस समय इस माला को देख करके क्या कहते हैं कभी? ये स्वाभाविक रूप से है, किसी ने स्मरण नहीं कराया, माला तो दिया किंतु माला पहनते ही उनको स्मरण आ जाओ, ये माला सुंदर तो है किंतु वैसी सुंदर नहीं है, बड़ी निपुणता के साथ में ये माला नहीं लगाई गई। इसलिए उस समय में पूछते हैं, कहते हैं, ओहो ये माला उतनी सुंदर नहीं है जितनी गोपियां सुंदर बना करके हमको पहनाती थी, इन फूलों में वैसा सुगंध नहीं है जैसा उसमें सुगंध होता था, इसमें केवल सुगंध है फूलों का, और उनकी मालाओं में कैसा सुगंध होता था, राधा जी के अंगों का भी सुगंध उसमें भरा रहता था, इसलिए ऐसा सुगंधित नहीं है। क्या ये अपने आप स्मरण करते हैं? किसी को कोई स्मरण करा दे वो बड़ी बात नहीं, उनकी क्रियाकलाप, उनका प्रेम ही यदि किसी को स्मरण करा दे ये बड़ी बात है। इसलिए वो कहते हैं माला गुंथने अथवा सैया लगाए, ओ सैया तो तुमने लगाया, वहां की दासियां, वहां की स्त्रियों कृष्ण के लिए जब मथुरापुरी में आए, बड़ी सुंदर, कहते खूब सुंदर तो लाइक इतनी, इतनी मुलायम, इतनी सुगंधित नहीं है जैसा कि गोपियां सज्जा बना करके फूलों से सजा देती, कमल के सुंदर सुंदर फूलों से, और उस पर बड़ा ही मुझे सुख होता था। आज तो हमें ये बिच्छू के डंक मारता है, ये सज्जा मारती है, मैं सो नहीं पाता दिन रात। ऐसा क्या कभी हमको क्वचित अपि किंकरी नाम कभी स्मरण करते हैं? अथवा बीटी का निर्माण, पान की बीड़ी खूब सुंदर लगा करके मथुरापुरी का सुदामा या कौन तांबुली मथुरा का, उससे सुंदर पीले पीले पत्तों वाला पान, बहुत ही सुंदर बनारसी पान, उसको यहां से लगा करके ले आ करके हमारे लिए दिया, उनको कभी दिया होगा। और उस समय में कहते कि पान तो है किंतु वो मजा नहीं है इसमें, वो आनंद नहीं, पान लगाए गए तो इसमें लौंग इस स्थान पर ना देकर के इस स्थान पर दिया गया, उसका सौंदर्य गड़बड़ हो गया, कितना सुपारी और कितना चूना देना चाहिए, इसमें चूना अधिक हो गया है और खैर कम हो गया है, वो सब चीजें नहीं है, सुगंध नहीं है। इसलिए इस बहाने भी क्या हमको स्मरण करते हैं? बिना बादने, खाने पीने के बाद में कृष्ण पलंग पर जब लेते हैं तो बिना बादन करती हैं सब महिलाएं, कहते हैं बिना ये हमको अच्छी नहीं लग रही, ये बिना इतनी मधुर तान से नहीं बजा रही है जितना गोपियां इतने सुंदर सप्तम स्वर से मूर्छना ताल लय के साथ में वो बजाती थी। अब उसमें आनंद कहा रहा है। इसलिए ताल आदि सृष्टि, ताल इत्यादि, ध्रुपद, धामार और सब, ये सब इतना सुर नहीं जानती जितना गोपियां जानती थी। गृत गीत नित्यादि सौंदर्य लावण्य, आप बंठन करके वो आ रही है रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि, या यहाँ की मथुरापुरी वाली है सुंदरी, किंतु हाँ गोपियों से इनकी तुलना हो सकती है, कितनी अद्भुत सुंदरी, इस रूप में भी याद करते हैं। वैदिक ध्यादिशु खूब मधुर मनु बोली बोलती हैं, कहीं गोपियों जैसा वैदग्ध नहीं है, क्या वो कह देंगी धूर्त इत्यादि मथुरा की कोई, या कोई व्यक्ति कृष्ण को धूर्त लंपट चोर इत्यादि नहीं कह सकते, ये सब वैदिक भी। प्रश्नोत्तर विलासे, कृष्ण को प्रश्न उत्तर में हरा दिया, वहां पर द्वारका और यहां पर हराने वाला कोई नहीं। संजोग लीला आदि, प्रेम स्नेह मान प्रणय आदि सु, प्रेम प्रेम की क्या दशा होती है, स्नेह की क्या होती है, प्रणय आदि की है? इन लोगों में प्रेम है मथुरा वासियों में, स्नेह भी हो सकता है, राग तक अधिक से अधिक, इसके बाद में नहीं। और यहां पर राग से ऊपर उठ गया, राग अनुराग भाव महाभाव अधिरूढ़ ऊपर से उठ करके, अब यहां पर ये कौन सी स्थिति है, अधिरूढ़ अवस्था में मोहन को पार कर, मोदन को पार करके मोहन की स्थिति में, दिव्य उन्माद इत्यादि, ये मथुरा इत्यादि के लिए असंभव है। तो क्या ऐसी दशा में भी हम लोगों को स्मरण करते हैं, यहां इनका प्रणय कैसा है, कैसी प्यारी है, हमारे प्रति कैसा स्नेह है, भाव है, सेवा की भावना है, कभी वो सोचते हैं? यथा अस्मत ब्रजस्था गोप्यो मान सुखयति, और ब्रज की गोपियां जो है हमें जैसा सुख देती हैं, मनोहारी बातें बोलती हैं, कैसे चलती हैं, उनकी भंगी भाव चलने इत्यादि सब इतना सुंदर, हमको सुख देती हैं, न तथा युवामी थी, अरे तुम लोग उतना नहीं दे, ऐसा कभी स्मरण करते हैं? गच्छता जाओ जाओ उनको कह देते हैं, ऐसा कभी कहते हैं? घो जदु स्त्रिया, कृष्ण कह रहे हैं अच्छा भी जाओ, हे जदु स्त्रियों स्व स्व पति नाम पति पति नेवा पति ने एव अलम जिसमा की हराने दो, रहने दो
अपने अपने पति की सेवा करो, बात
जा बस यही पर, यहाँ आने की तुमको कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से कह देते हैं। उस समय में कृष्ण ने इनको भी कहा, ये प्रश्नोत्तर का हो गया। गोपियां कहती हैं हाँ वो तो हो गया, इन्होंने तो इनको कहा तुम जाओ अपने पतियों की सेवा करो, और गोपियों को कहेंगे कि जाओ अपने पतियों की सेवा करो तो वो क्या कहेंगे, पहले गुरु जी की सेवा कर ले दीजिए, इसके बाद में पतियों की सेवा करेंगे, नहीं तो आप धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, आपके धर्म को हम ही लोग रखी हैं, हम जब भी चली जाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों भ्रष्ट हो जाएगा? इसलिए कि हमारी सेवा नहीं इनकी हुई, अब हमको पतियों की सेवा करने के लिए कर रहे हैं और हम सब छोड़ करके आई हैं। परित्यजमान एकम शरणम, अहं ये कह करके तुम लोग जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अहं तु स्वप्रात ब्रज में एव गच्छम गच्छन, मैं वाप ब्रज में जाऊंगा, मैं कल ही जाऊंगा सवेरे, अब तुम लोगों से ऐसा कर करके उद्देत हो गए हैं। ये हुआ अपिवत मधुपुर जा, अपि शब्द का अर्थ नहीं कितना ले आया। वो आ रहे हैं, शायद तैयार है, किंतु वो लोग आने नहीं देते थे, अब किसी तरह से नहीं मानेंगे, अब जरूर आ रहे हैं, इसलिए वो देखा भाव नेत्र से आ रहे हैं। जब भाव नेत्र से देखा जी आ रहे हैं तो देखा जी कैसे आ रहे हैं, जो अभी हाथ उठाया उनको पकड़ने के लिए देखा जब तो हाय हाय करने लगते, हाय करते हुए एकदम तन्मय होकर के कह रहे हैं, कहो कब आएंगे? अगर सुगंध भुजस्माकम मुद्दी कदा अधाश्यति धर्षति, कब अपने स्वभाव सुलभ अगरु से लिप्त या अगरु जैसा गंध सुगंध उनके हाथों में अपने आप है भुजा लताओं में, ऐसी गोल गोल सुंदर सुंदर सर्प की भांति ऊपर से नीचे की तरफ में पतली होती हुई बड़ी कोमल बड़ी मधुर सुगंधी अगरु जैसे हाथों को अस्माकम, जब वो हम लोगों को इसी पर हाथ रख देते थे, आज कब हमारे हाथ अपना वैसा हाथ हमारे सिर पर, आज जब मैं अपने लिए कर रही हूं, मैं उनके उन प्यारे हाथों को अपने हाथों में लेकर के हमारा समस्त अंग सुगंधित हो जाता था, अत्यंत सुगंधित, और उस सुगंधित से हमारा सुगंध पा करके और वो अपने को भी भूल जाते, तो आज वह अपना अगरु जैसा सुंदर आज हमारे अंगों में वो गंध नहीं, आज वो हमारे अंगों में पीत वर्ण नहीं, सोने जैसी चमक नहीं हमारी, हम लोग का शरीर कैसा उनके बिहने बिना काला सा पड़ गया है, अंगों में वो सुगंध नहीं रही, आप कब आएंगे हमारे हृदय में प्राण का संचार करेंगे, हाथों पर रख देंगे, अब भविष्यत में ऐसा कभी गलती नहीं करूंगा, कभी भी तुम्हें छोड़ करके इतना विरह ताप मैं नहीं दूंगा, ये अभय दान करेंगे सिर पर अपने हाथ को रख कर, और पहले जैसे ही हम सुगंधित निर्मल और वैसे ही मधुर हो सकेंगे। तीन च सम आश्वासित ओ कहेंगे, ओ प्राण प्रिय मैं शपथ हजार बार शपथ खाता हूं कि मैं ये कह रहा हूं भवतीं तत्वा नो क्वापि जास्यामि, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने त्रिभुवन देख लिया मथुरा गया और सब जगहों में गया, मैं त्रिभुवन मध्ये क्वापि जुष्मत सादृश्य गंधलेशम अपि न उपलब्धवान, तुम्हारे सौंदर्य के सुगंध तुम्हारी मृदुता का सुगंध कहीं भी मैंने किसी में तनिक गंध नहीं पाया, जितना तुम्हारे अंदर में प्रेम है जैसा तुम्हारे अंदर में मधुर भाव है ऐसा मैंने जगत में कहीं गंध भी नहीं पाया, अब मैं प्रतिज्ञा करके शपथ लेकर के कहता हूं तुम ही हमारी सबसे अधिक प्रिया हो, मैं तुम्हें शपथ तुम्हारा लेकर कहता हूं अब मैं तुम्हें कभी छोड़ करके कहीं भी विश्व में हम नहीं जाएंगे, इस तरह से। किंतु जब देखा होश आया आज हाँ तुमका तो है नहीं, एकदम भाव में विभोर हो गई और कृष्ण का स्मरण हुआ, उनके गुणों का स्मरण हुआ, केले की पत्ती की भांति में थर थर कांपने लग गई और अष्टसात्विक भाव अपने अंतिम दशा में कौन सा तुम्हारी प्रज्वलित सुदीप्त अत्यंत सुदीप्त
माया
और ये सब भाव उनके सी अंग में प्रत्यक्ष देखने लग गए और देखते 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 अंतिम जो है प्रेम की अंतिम दशा मूर्छा, झट कदम्ब के केले केले की जड़ की भांति कटे हुए की भांति बाक रुद्ध हो गया, श्वास उनका रुद्ध हो गया, अत्यंत विरह में आतुर हो गई। उद्धव जी ने आज तक अभी ध्यान में देखा, अब ध्यान मैंने शब्दकोश में बिरह शब्द पढ़ा था, जैसे हम लोग बिरह शब्द देखते, आज उन्होंने बिरह की प्रतिमूर्ति देखा और बिरह को तड़पते हुए देखा, उद्धव जी का हृदय भी द्रवित हो गया किंतु रो नहीं सके, हिमालय पहाड़ को देखकर के ऊंचाई देखा जी इतना ऊंचा है, संत ऊंचे हो नहीं सकते, ऐसी इनकी स्थिति हो गई। इसमें पहले आधे पाद में आर्जवम बड़ी सरलता का वर्ण सौम्य कहा, सौम्य अत्यंत सरल व्यक्ति को सौम्य कहा, सीधा साधा। वैसे ये पहले सब पहले में आधे में सौम्य अपि वता मत पूज्या आर्य पुत्राधुनास्ते, इसमें सौम्यता का वर्णन किया है, आर्य पुत्र उनको बताया। द्वितीय में अपना प्रसंग उत्थापन नहीं किया, स्मृति से पितृ गेहान सौम्य बंधुश्च गोपाल, इन सब का पूछा, अपना कहीं नहीं पूछा। इसे इसमें गंभीर है, हम लोग रहते हैं तो पहले कहते हैं ये हमको याद करते हैं, पहले कहे नहीं, ये प्रेम का गंभीर है। और तृतीय और चतुर्थ पाद में दैन्य चपलता, दैन्य क्या है, कब वो आएंगे और हमारे सिर पर अपने हाथों को रखेंगे, उत्कंठा कब आएंगे, ये चपलता जिस जैसा ऐसा हो उसको कहते हैं संजल्प। माने संग माने यहाँ पर सम्यक रूप से अच्छी तरह से सुजल्प जैसा, ये सु आया, अभी तक तो चल रहा था इधर उधर की बात, उनको यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, सच दिव्य उन्माद, ये दिव्य उन्माद महाभाव की उत्कृष्ट अवस्था, अत्यंत महाभाव में भी अत्यंत उन्नत अवस्था, जो कभी भी विश्व में कहीं ऐसा नहीं देखा गया, ये राधा जी में देखा गया और अब देखा गया महाप्रभु जी में, बल्कि उन भावों को भी जो कहीं नहीं देखा गया है, जिसको शास्त्रकार लोग न समझ सके न वर्णन किया है, वर्णन तो किए हैं हमारे वेद व्यास जी ने, उनको कहां देखने को ये मिला होगा। दूसरे सुत को हमारे सुखदेव जी हैं, उनको भी मिला होगा या नहीं मिला होगा नहीं कह सकते, किंतु महाप्रभु जी को देख करके सब दामोदर राय रामानंद जी ने और हमारे गोविंद जी ने कुछ उपलब्धि की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको दिखलाया इन भावों को। मोहनस्य ये मोहन है कौन सा में महाभाग उत्कृष्ट भागस्य मोहनस्य विलास विशेष हो, इसलिए ये मोदन का
मोदन के मोहन
दीरा में होता, ऐसे में होता मिलन में मोहन और वही दीरा में हो जाता है मोहन, और उसमें भी क्या दिव्य उन्माद, उस दिव्य उन्माद में भी उद्भास्व और सब चीजें हैं जिनको यहाँ पर वर्णन किया गया है, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। कल इसके बाद में जो बातें हम बतलाएंगे आज इन तक वंचा कल्पतरु भैः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां।